क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली, कलिकाल को ठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। नमो अरहंताण। नमो अरहंताण में एक ऐसा पद है जिसमें सातों केवलियों का समावेश है, और सातों का समावेश इस बात को प्रमाणित करता है जिन भक्तों को सूचित करता है कि यह सार्वभौमिक है। धवल ग्रंथ में लोए सव, जिसको अपन पांचवें पद में पढ़ते हैं, उसके विषय में लिखा है कि लोए और सव ये पांचों के लिए है, केवल साहूणम के लिए नहीं बल्कि पांचों के लिए है। नमो लोए सव अरहंताणम, नमो लोए सव सिद्धाणम, नमो लोए सव आयिर्याणम, नमो लोए सव वज्झायाणम, नमो लोए सव साहूणम। तो सातों प्रकार के अरहंत उसमें आ रहे हैं। ये जो सव शब्द है, सव शब्द संख्यावाची भी होता है। चलो सब लोग आ जाओ, जितनी संख्या में जो भी उपस्थित हो वो सब आ जाओ, तो वहां पर सर्व जो है वो उपस्थित संख्या का वाचक है, जिसमें से एक को भी पृथक न करते हुए सबको स्वीकार किया जा रहा है। सर्व शब्द का एक अर्थ कालवाचक भी होता है। धवल ग्रंथ में सर्व शब्द को कालवाचक स्वीकार किया गया है। आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं कि लोक लोकवाचक है, जगतवाचक है, और सर्व कालवाचक है। सर्व लोकवर्ती, सर्व कालवर्ती, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर और साधु, इनके लिए नमस्कार हो। अभी अपन ये देख रहे हैं कि जैसे अरहंतों में भेद हैं, वैसे ही सिद्धों में भी भेद हैं। अवगाहना की अपेक्षा भेद है, यानी कोई छोटी आकृति से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं और कोई बड़ी आकृति से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, तो आकृति की अपेक्षा से आज भी उनकी आत्मा उसी आकार में है। किंचित न्यून बोलते हैं, क्योंकि अपने शरीर में मनुष्य अवस्था में ये जो शरीर की बाह्य आकृति दृष्टिगोचर होती है, अंदर कई पोले स्थान भी होते हैं, और कुछ अपने द्वारों में भी अपन देखें तो कर्ण नलिका जो होती है, नासिका के जो विवर होते हैं, ऐसे कुछ स्थान है जिनमें वायु का क्षेत्र है, जिनमें शरीर, उसको अपन शरीर नहीं कह सकते, वो जो खाली जगह है बीच में उसको क्या कहोगे, वहां आत्मा के प्रदेश नहीं होते, यानी वहां पर आत्मा नहीं है, वो केवल एक खोखली जगह है। सिद्ध अवस्था में वो आत्म प्रदेश सघन हो जाते हैं, जो खाली स्थान है वो पूरे समाप्त हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया यहीं से हो जाती है, यहां पर एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में इस तरह सघन अवस्था हो जाती है और फिर वहां सिद्धालय में अनंत काल के लिए जो सिद्ध परमात्मा है वो उसी अवस्था में रहते हैं, सघन अवस्था में। तो सघन होने के कारण क्या हुआ, कि जैसे एक डब्बे में दाल भरी हुई है उसको पिसवा लिया और पीसने के बाद उसको गूंथ लिया। दाल से भी कई चीजें इस प्रकार की बनती है, मंगोड़ी वगैरह। तो उसका जो फैलाव था वो कम हो जाता है क्योंकि सघन हो गया, वो पदार्थ सघन हो गया। सिद्धावस्था में ऐसी स्थिति हो जाती है। तो सिद्धों के भी अनेक भेद हैं, आकृति की अपेक्षा से। और बड़ी विचित्र जानकारी की बात है, आपको हम पहले भी बतला चुके हैं कि जो अरहंत परमात्मा होते हैं वो ही सिद्ध होते हैं, लेकिन अरहंत परमात्मा में जो 7 भेद किए हैं शास्त्रों में बताए गए हैं, उनके अतिरिक्त अगर अपन देखें तो संस्थान की अपेक्षा से भी शास्त्रों का ऐसा निर्देश है कि 6 संस्थान से अरहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। अब 6 संस्थान का अर्थ होता है कि तीर्थंकर जैसी सौम्य और सुडौल और व्यवस्थित सुंदर आकृति हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। वामन संस्थान से भी निर्वाण प्राप्त होता है। वामन संस्थान में बौनी अवस्था है लेकिन हो जाता है काम। इसी तरह स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, अगर पीठ में ऐसे उठा हुआ एक प्रदेशों का प्रचय होता है, कुब्ज कहते हैं उनको, अपन बोलचाल में कुबड़ा बोलते हैं। पंचम काल में तो ऐसे मनुष्यों की दीक्षा का निषेध किया गया है, लेकिन चतुर्थ काल में जब केवली और श्रुत केवलियों का सानिध्य विद्यमान था तब ये सारे संस्थान वाले दीक्षा ले सकते थे। और दीक्षा लेकर वो निर्वाण को भी प्राप्त हो सकते थे। संगनन एक ही चाहिए वहां पर। अस्थि बंधन की जो दृढ़ता है वो केवल वज्र वृषभ नाराज संगनन ही अपेक्षित है, उसी से मोक्ष होता है। तो सिद्धों के भी अनेक भेद हैं, आकार प्रकार की अपेक्षा से। कोई समुद्रों से सिद्ध हुए हैं, कोई पर्वतों से सिद्ध हुए हैं, कोई भूमि से सिद्ध हुए हैं, कोई गुफाओं से सिद्ध हुए हैं, कोई ऐसे आकाश से सिद्ध हुए हैं, कोई वैरी उठा करके ले गया और उसने आकाश में ऐसे छोड़ दिया, तो वहीं उन्होंने केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे नाना प्रकार के सिद्ध हैं। फिर आचार्यों को देखें अपन, तो आचार्यों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के आचार्य होते हैं। कोई 14 पूर्वधारी श्रुत केवली आचार्य होते हैं ज्ञान की अपेक्षा देखें, कोई 11 अंग 10 पूर्व के धारक विशाखाचार्य आदि जैसे आचार्य होते हैं, कोई 11 अंगधारी आचार्य होते हैं, कोई एकांगधारी होते हैं, कोई 7 अंगों के धारी आचार्य होते हैं। तो ज्ञान की अपेक्षा से बहुत सारे भेद हो जाते हैं आचार्यों के। फिर कोई आचार्य वाग्मी होते हैं, यानी वो अपने वचन कुशलता से विभिन्न मान्यता वालों को समझा बुझाने में समर्थ होते हैं। वो अच्छी तरह उनको समझा सकते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। कई ऐसे आचार्य होते हैं जो रिद्धिधारी होते हैं, चारण रिद्धिधारी, अवधिक ज्ञानी। वड्डाराधने ग्रंथ में, कन्नड़ भाषा में जो ग्रंथ है, उसमें भद्रबाहु स्वामी का जो चरित्र है उसमें यह भी उल्लेख है कि वो श्रुत केवली होने के साथ साथ अवधिक ज्ञानी भी थे। तो कई कुछ आचार्य अवधिक ज्ञानी भी होते हैं, कुछ मनोपर्य ज्ञानी भी होते हैं। यशोधर मुनिराज जिन पर क्षणिक राजा ने उपसर्ग किया था वो मनोपर्य ज्ञानी थे। कुछ आचार्य और भी अलग अलग प्रकार की क्षमताओं वाले होते हैं, निर्यापक आचार्य, बालाचार्य, एलाचार्य, गणधर आचार्य, प्रवर्तक आचार्य, अनेक प्रकार के भेद हैं आचार्यों के। उपाध्याय, उपाध्याय के जो 25 गुण बताए जा रहे हैं वो शास्त्रों में नहीं मिलते। यानी जैसे मान लो हम जिन ग्रंथों के नाम बता रहे हैं, धवला ग्रंथ, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ, और क्रियाकलाप ग्रंथ, इन ग्रंथों में उपाध्यायों के 25 गुण नहीं मिल रहे। और यदि किसी ग्रंथ में आप लोगों की जानकारी में हो तो हम बहुत समय से खोज कर रहे हैं, यदि आपको मिल जाए तो आप हमें भेज दीजिएगा तो हमें भी कोई नई जानकारी मिल जाएगी। गुण 36, 25, 8, 20 ये तो ठीक है, पर वो 25 गुण कौन से हैं? 11 अंग 14 पूर्व हैं, ऐसा स्पष्ट कथन कहीं भी नहीं मिलता। 25 गुणों का वर्णन पढ़ने में नहीं है, मूलाचार ग्रंथ में भी नहीं है, नियमसार ग्रंथ में भी नहीं है। आचार्य कुंदकुंत स्वामी के संपूर्ण वांग्मय में कहीं भी उपाध्यायों के गुणों का ऐसा वर्णन कहीं नहीं देखने में आता है। तो उपाध्यायों में भी ज्ञान की अपेक्षा से अंतर हो जाता है, काल की अपेक्षा से, अवगाहना की अपेक्षा से, ऊंचाई वगैरह की अपेक्षा से, संस्थान आदि की अपेक्षा से अंतर हो सकता है। पूरे सब चौथे काल, पंचम काल सबको मिलाकर के हम बता रहे हैं। कोई चरम शरीरी भी होते हैं इनमें आचार्यों में भी, कुछ तद्भव मोक्षगामी होते हैं और कुछ अचरम शरीरी होते हैं, भवांतर में मोक्ष जाने वाले होते हैं। अनेक भेद बन जाता है, और साधुओं में कितने सारे भेद हैं, ऋषि, मुनि, यति, अनगार, ये सारे भेद साधुओं में भी पाए जाते हैं। तो यदि सर्व शब्द को अपन प्रकारवाची मान लें तो भी सव साहूणम, ये सव शब्द पांचों पदों में लगा करके घटित किया जा सकता है। नमो लोए सब अरहंताण, नमो लोए सब सिद्धाण, नमो लोए सब आयर्याण, नमो लोए सब उवज्झायाण, नमो लोए सब साहूण। ये जो प्रयोग है एक बार क्यों लिखा है, नमो 5 बार लिखा है लेकिन ये लोए और सब 1 बार लिखा, क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि साहित्य में दीपक अलंकार का वर्णन आता है, छंद, व्याकरण, अलंकार सबका समावेश होता है साहित्य में, उसको वांग्मय कहते हैं। वांग्मय किसे कहते हैं? छंद, व्याकरण और अलंकार, इन तीनों के समूह को वांग्मय कहते हैं। भक्तामर सूत्र में अपन ने पढ़ा था, भक्तामर सूत्र में वांग्मय शब्द आता है ना, कौन से काव्य में आता है? यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधा, दूसरे काव्य में आता है। तो वांग्मय का अर्थ होता है छंद, व्याकरण और अलंकार। तो ये अलंकार है, एक दीपक अलंकार, जैसे हम आपको बता रहे हैं, दो उदाहरण दे रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में ऐसे दो सूत्र हैं जिनमें एक ही बार लिखा हुआ शब्द अनेक बार अर्थ घटित करते समय ग्रहण किया जा रहा है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, क्या अर्थ है इसका? सम्यक दर्शन, फिर ज्ञान अकेला है या सम्यक ज्ञान है, चरित्र अकेला है या सम्यक चरित्र है, तीनों के साथ सम्यक लगाया तो इसको आदि दीपक कहा। दीपक अलंकार के तीन भेद हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत्य दीपक। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, यहां पर सम्यक शब्द आदि दीपक है, वो प्रारंभ में रखा हुआ दीपक है जो अंत तक प्रकाश फैलाता है। फिर ऐसे कुछ मध्य दीपक भी होते हैं, कुछ अंत्य दीपक भी होते हैं। अंत में आया हुआ शब्द प्रारंभ के सब शब्दों के साथ लगाना होता है, उसका संबंध। उत्तम क्षमा मार्दवार जो शौच सत्य संयम तपस्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणी धर्म। अब यहां देखिए, उत्तम शब्द जो है, क्या केवल उत्तम क्षमा है? मार्दव में तो उत्तम नहीं लिखा हुआ है, आर्जव में और अन्य किसी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये दीपक अलंकार है। तो दीपक अलंकार होने के कारण आदि दीपक उत्तम शब्द दसों के साथ लागू होता है। ऐसे ही कहीं मध्य दीपक भी शब्द होते हैं जो आगे और पीछे सर्वत्र अपना प्रकाश डालते हैं। पूर्व के शब्दों में भी वो लगता है और फिर बाद वाले शब्दों में भी लगता है। नमो लोए, इसकी भी यही स्थिति है, ये सभी पदों के साथ लगा हुआ अलंकार है और इस कारण से ये पूरा इसका अर्थ वैसे घटित करना है। पढ़ना नहीं है, पढ़ते समय जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ना है। 35 अक्षर को आप बढ़ा नहीं सकते, 35 अक्षर को आप बढ़ा दोगे 55 हो जाएंगे, नहीं होंगे? कैसे होंगे 55? नमो लोए सब अरहंताण, नमो लोए सब सिद्धाण, नमो लोए सब आयरियाण, नमो लोए सब वज्जायण, नमो लोए सब साहूणम, 55 हो गए। तो अपन को 35 रखना है। अर्थ निकालते समय, जिसको अंदर समझते समय, अपने ज्ञान में सबके साथ लगा लेना। तो सब शब्द कहां कितने अर्थ वाला हो गया, एक संख्यावाची हो गया, दूसरा कालवाची हो गया, तीसरा प्रकारवाची हो गया। अब कालवाची कैसे हुआ? नमो लोए सब अरहंताण, लोक में सर्वलोक पर सर्वकाल में जितने भी अरहंत हैं उन सब के लिए नमस्कार। और कितना सुंदर नमस्कार है ये, कि इसमें कोई नाम नहीं लिया गया और नाम न लेने के कारण नमोकार मंत्र, जो जिन शासन का मूल मंत्र है, जिन शासन की निष्पक्षता को प्रकट करता है, इससे ये बात सामने आती है कि जैन शासन व्यक्तिवाद को स्थान नहीं देता। अपने काल में तीर्थंकर प्रधान पुरुष होते हैं, लेकिन वो ही सब कुछ हो ऐसा नहीं है। उनके पहले भी तीर्थंकर हो चुके हैं, उनके पश्चात भी तीर्थंकर होते रहेंगे, कोई अंत नहीं है इस धारा का। ये धारा ध्रुव है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, कुछ अतीत हो जाते हैं, कुछ भविष्य में आने वाले रहते हैं, कुछ वर्तमान में विद्यमान है, 20 विद्यमान है, 24 चले गए, 24 आएंगे, ऐसा क्रम चलता है। तो उसी क्रम में अपन थोड़ी सी चर्चा स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से करने में तत्पर थे कि जिन प्रतिमाओं में जो फणा पाए जाते हैं अथवा लताएं होती है अथवा खंदारगिरी में जो ऊपर गुफा में बाहुबली स्वामी है उनके शरीर पर बिच्छू हैं, उनके शरीर पर गिरगिट छिपकलियां और अन्य भी जीव जंतु चढ़े हुए हैं, और ऐसी भी शक्यता है कि कोई साधु है उनके शरीर से सर्प लिपटे हों और उस समय की कोई प्रतिकृति बना ली जाए। तो ये चर्चा निकलती है। तो विशेष रूप से हमने ये चर्चा पार्श्वनाथ भगवान को लेकर के आपके सामने रखी थी। विभिन्न शास्त्रों से अपन ने ये समझा कि पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग काल में भी धर्णेन्द्र पद्मावती ने जो भी किया तो उनके ऊपर फणा मंडप की रचना हुई थी और एक छत्र भी बना था। ऐसा छोटा मोटा छत्र नहीं था, बड़ा छत्र था। बड़ा छत्र इसलिए था क्योंकि वहां पर छत्र की आवश्यकता थी। जो वृष्टि हो रही थी वो वृष्टि वहां न पड़े ये अपेक्षा थी। तो ये उपसर्गकालीन वर्णन है। और विशेष तो ये बात देखो हमारी भी जानकारी में नहीं थी, लेकिन अकस्मात हमारे हाथ में ये ग्रंथ आया पार्श्वाभ्युदय, और सन अभी कम से कम 5-6 वर्ष पहले ही हमें ये जानकारी मिली है। जब हमने ये देखा कि भगवान के उपसर्ग के वर्णन में तो ऐसा कथन आ रहा है कि हमने भी न जाने कितनी बार ये बात कही होगी कि फणा आदि जो है वो तो उपसर्गकालीन प्रतीक है, उपसर्ग के प्रतीक है। केवल ज्ञान के बाद तो सब क्लियर अप हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता वहां पर, एकदम भगवान समवसरण में विराजमान रहते हैं, वहां ये सब कुछ नहीं होता। तो जब ये ग्रंथ पढ़े तब पता चला कि अरे बार बार जिनवाणी माता से क्षमा मांगते हैं, अभी भी जो अपन बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या पता इसमें भी कोई कमी हो। तो इसलिए बार बार अपन जिनवाणी माता से अपनी अपूर्णता के लिए क्षमा मांगते हैं और पूर्णता की प्रार्थना करते हैं कि माता आप हमें बस पूर्ण बना दीजिए। और कौन बना सकता है अपने को पूर्ण? केवल मां ही बना सकती है। तो ये एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, उपसर्ग का अंत हो गया, उपसर्ग करने वाला भगवान का भक्त बन गया, और तब पुनः धर्णेन्द्र ने भगवान के ऊपर स्तुति करते करते फणा मंडप की रचना की, और देवी ने अहोधैर्यम करते करते पुनः छत्र की रचना की। उपसर्ग समाप्त होते ही ये सारी स्थितियां समाप्त हो चुकी थी। कंकड़ पत्थर ओले बारिश की जो वर्षा हो रही थी वो सब शांत हो चुकी थी। तो ये दोबारा उन्होंने ये कार्य किया, ऐसा इसमें सूचित हुआ, शास्त्र में अपन ने पढ़ा। तो इससे अपनी एक धारणा परिवर्तित हुई कि केवल ज्ञान के बाद फणा नहीं होता, वो तो दीक्षा के बाद उपसर्ग काल का फणा है। तो ये धारणा परिवर्तित हो गई और अब ये बात धारणा बनी कि केवल ज्ञान के बाद भी फणा रहता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसमें ये नहीं लिखा कि धर्मेंद्र ने फणा बनाया, पद्मावती ने छत्र लगाया और फिर हटा लिया, हटाने का कथन नहीं है उसमें। और हटाने का कथन न होने के कारण ये शक्यता है कि जहां जहां भगवान का समावसरण लगा हो, धर्मेंद्र का फणा वहां पर भी रहा हो। और छत्र तो होता ही है, अधोलोक का प्रतिनिधि एक छत्र होता ही है कि भगवान पाताल लोक के भी स्वामी है, मध्य लोक के भी स्वामी है, ऊर्ध्व लोक के भी स्वामी है, तीनों लोक के नाथ है। तीन छत्र तो होते ही हैं। प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्व, तीनों जगत के परमेश्वर है, इसको ये छत्रत्रय प्रख्यापय प्रख्यापित करता है, प्रकट करता है, विख्यात करता है। अब अकस्मात पूर्व सत्र में जब अपन अर्घ वगैरह चढ़ा चुके थे तो कोई प्रश्न आया था कि ये जो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में ये घटना हुई उपसर्ग वाली, तिलोय पंडित्य में तो तीन तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुए हैं, पर पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का वर्णन विस्तार से मिलता है शास्त्रों में। महावीर स्वामी पर भी उपसर्ग हुआ था अतिमुक्तक नामक श्मशान में, जब महावीर स्वामी रात्रि काल में प्रतिमा योग धारण करके अवस्थित थे तब उन पर भी उपसर्ग हुआ था। संपूर्ण रात्रि पर्यंत उनके ऊपर भयंकर उपसर्ग हुआ, लेकिन जब वो विचलित नहीं हुए तो उपसर्गकर्ता ने उनका नाम महती महावीर रखा। तो अपन इतना जानते हैं कि भगवान महावीर के पांच नाम थे, लेकिन ये उपसर्ग वाला नाम जो है वो महती महावीर नाम है, इसकी चर्चा थोड़ी कम है। अपन जब गणधर वलय का पाठ करते हैं तो अंतिम जो ओम ह्रीम अरहम नमो भयवदो महदि महावीर वड्ढमाणो महदि भयवदो महदि महावीर वड्ढमाण बुद्ध ऋषिनो चेदी पढ़ते हैं ना, तो यहां पर महदि महावीर वड्ढमाण बुद्ध ऋषिनो ये पद है, यहां पर महति महावीर शब्द है, ये नाम उपसर्गकर्ता द्वारा प्रदत्त है। और उपसर्गकर्ता ने उनका विनाश करने के लिए उपसर्ग नहीं किया था और शत्रुतावश भी उपसर्ग नहीं किया था, उन्होंने केवल परीक्षा लेने के लिए उपसर्ग किया था। उनके मन में यह विकल्प आया, ये विचार आया कि ये राजमहलों में पला हुआ राजकुमार निर्ग्रंथ श्रमण की तपस्या कैसे कर सकता है, मैं परीक्षा लूंगा कि इनकी तपस्या में कितनी दृढ़ता है। बस उस परीक्षा के लिए उन्होंने ये कार्य किया था और जब देखा कि वो परीक्षा में अपेक्षा से अधिक दृढ़ है तब उन्होंने नाम रखा महति महावीर। महति का अर्थ होता है महान में महान वीर, महान में महान वीर, यानी जितने भी महान की श्रेणी में आते हैं उन सबसे महान वीर महावीर, ये नाम इसलिए रखा था उन्होंने क्योंकि जो उपसर्ग उसने किया था वो उपसर्ग कोई सामान्य साधु सहन नहीं कर सकते थे। और यही कारण है कि अपन ने देखा ना, अमरावती में महावीर स्वामी के ऊपर भी एक फणा बना हुआ है। ये प्रतीक मात्र है, उपसर्ग का प्रतीक मात्र है। पार्श्वनाथ भगवान पर जो फणा बना है वो उपसर्ग के बाद वाला फणा, अगर मुंह खुले हो सांप के तो, अगर मुंह बंद हो तो फिर वो उपसर्ग का प्रतीक है, ऐसे ही समझना। क्योंकि वो केवल ज्ञान के बाद वाले फणा नहीं है जिसमें सर्प के मुख बंद है। बंद मुख वाला जो फणा है वो उपसर्गकालीन मुनि अवस्था वाला फणा है। तो प्रश्न ये आया था कि अपन ने ये भी जाना कि तिलोय पंडित्य के अनुसार जो शासन यक्ष और यक्षी होते हैं उनके विषय में आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू में लिखा है, ताह शासनादि रक्षार्थम कल्पिताह परमागमे। परमागम में अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचनों में, ताह वे जो देव हैं, जो शासन यक्ष यक्षी हैं, वे शासन अधिरक्षार्थम कल्पिता, शासन की अधिरक्षा के लिए। शासन जो है भगवान का तीर्थ शासन है। तीर्थ शासन के दो भेद बताए हैं तिलोय पंडित में, एक श्रुत तीर्थ और दूसरा धर्म तीर्थ। तो इनके वो रक्षक हैं, अधिरक्षक हैं, आगम के भी और धर्म के भी, धर्म शासन के, तीर्थ शासन के भी रक्षक हैं। वो मंदिरों के रक्षक नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये देव लोग चोर चोरी कर जाते हैं, ये क्या करते रहते हैं उस समय, सोए रहते हैं क्या? एक पहली बात तो ये है कि ये भाषा आवेश को सूचित करती है। इसलिए यदि कोई भी आगम का समाधान प्राप्त करना हो तो आवेशपूर्ण शब्दों का प्रयोग न करते हुए विनम्र शब्दों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको समाधान चाहिए ना, या समाधान चाहते हुए आप अपना अंदर का जो भाव है वो भी पूरा बाहर निकालना चाहते हैं? आवश्यकता नहीं है, इतना इतना अपन सब्र रख सकते हैं ना। सुने तो सही जिनवाणी माता क्या कह रही है, इतनी आकुलता क्यों? प्रश्न पूछते समय अपन शांति से भी पूछ सकते हैं। उत्साह को मत छोड़ना, उत्साह के साथ पूछो, लेकिन आवेश के साथ क्यों? आवेश से असत्य सत्य नहीं बन जाता। ये तो ज्ञान का जगत है, यहां कषायों का क्या काम है? जिसका जो कार्य है, जिन शासन की व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि वो अपने कार्य का उल्लंघन नहीं करते, धर्मो ही देवताभ्यः प्रभवति। आचार्य अमृतचंद्र सूरी लिखते हैं कि धर्म की प्रभावना देवताओं से होती है। मनुष्यों के लिए तो कहा ही है, सभी सम्यक दृष्टियों के लिए प्रभावना अंग बताया है। तो सबके कार्य विभाजित हैं, वो अपने इंद्रों के आदेश से जितना कहा गया है उतना ही काम करते हैं, और उपलक्षण न्याय से जो भी उनको निर्देश मिले हैं उसमें समाविष्ट गतिविधियों को वो संभालते हैं। वो चौकीदार नहीं है,
मंदिर जिन्होंने बनवाए हैं उनका कर्तव्य है उसकी देखरेख करना। शासन देवताओं का कार्य शासन रक्षा करना है, मंदिरों की रक्षा करना नहीं है। और शासन का अर्थ क्या है? शासन का अर्थ मंदिर नहीं होता, शासन का अर्थ तीर्थ शासन है। भगवान का तीर्थ चलते रहे उसकी सुरक्षा करना उनका काम है। काल दोष से 7 तीर्थों का विच्छेद हो गया, काल दोष था, इतना प्रचंड काल दोष था कि तीर्थंकरों का तीर्थ जिसकी रक्षा करने वाले इतने सशक्त देव वहां उपस्थित हैं उनका तीर्थ विच्छेद को प्राप्त हो गया। वस्तुतः देखा जाए तो एक एक तीर्थंकरों का तीर्थ शासन काल किन्हीं का विस्तृत है किन्हीं का संक्षिप्त है। पार्श्वनाथ भगवान का सबसे अल्प काल है तीर्थ शासन काल, वो लगभग 250 वर्ष का काल है। और इन शासन देवताओं की आयु कितनी होती है? वेंतर निकाय में जो यक्ष यक्षी हैं उनकी आयु परा पल्लोपम अधिकम तत्वार्थ सूत्र के 4th अध्याय में बताई है कि एक पल्ले से कुछ अधिक आयु हो सकती है उनकी। तो इससे अपन ये जान लेते हैं, अगर थोड़ा विचार करें तो, कि आज कौन से तीर्थंकर के शासन यक्ष और यक्षी अभी जीवित होंगे, क्योंकि एक पल्ले से अधिक कुछ आयु निकल जाए उसके बाद वो उस पर्याय से भिन्न पर्याय में चले जाएंगे, मनुष्य गति को प्राप्त करेंगे। नियमतः सम्यक दृष्टि देव हम जिन पासे चिट्ठन्ते, वो भक्तिपूर्वक समवसरण में जिनेन्द्र भगवान के पास रहते हैं, ऐसी गाथा है तिलोई पंडित्य में। ऐसे हाथ जोड़ी हुई उनकी मुद्रा भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान के निकट रहते हैं, वहां गंध कुटी में और जिन शासन की रक्षा करते हैं जब तक उनकी आयु है। फिर उनकी आयु पूर्ण हो जाती है तो कोई और उनके स्थान पर उत्पन्न हो जाता है, तो उनको फिर शेष जो देव वहां पर पहले से उपस्थित है वो बताते हैं कि तुमने कोई ऐसा पुण्य कमाया है जिससे तुम्हारा यहां जन्म हुआ है। जैसे चक्रेश्वरी देवी की आयु पूर्ण हो गई अपनी अवधि समाप्त होने पर, तो जो दूसरी देवी आई वो भी चक्रेश्वरी, तो उनको वहां के जो विद्यमान देव और देवियां हैं वो उनको संबोधन देते हैं कि देखो तुम पुण्य कमा करके यहां उत्पन्न हुई हो, और यहां पर जो तुमसे पूर्व चक्रेश्वरी देवी थी वो साक्षात वृषभनाथ भगवान के समवसरण में भगवान के पास रहने वाली देवी थी, वो शासन यक्षी थी। तो इन सब बातों को सुनकर उसी प्रकार यक्ष के लिए भी वही बात होती है, उनका जब जन्म होता है तो उनको वहां के देव समझाते हैं। गोमुख यक्ष हैं तो कोई दूसरे गोमुख यक्ष बने हैं तो उनको वो देव समझाते हैं दूसरे, कि ऐसी स्थिति है तुम्हारे जो पूर्वज थे वो ऐसी पदवी के धारक थे समवसरण में, शासन यक्ष और यक्षी होना कोई सुगम कार्य नहीं है। और कई स्थानों पर इन यक्ष और यक्षियों ने धर्म की बड़ी प्रभावना की है, धर्म की बड़ी रक्षा की है। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने स्वयं अपने श्रीमुख से सन 2003 जनवरी माह में भोपाल के जवाहर चौक के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव के अंतिम उद्बोधन में ये बात कही थी। उनने विदिशा का नाम लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग अगर कहीं हो भोपाल में आप सुन लेना। उनने आसपास के अन्य स्थानों का नाम लिया था और उन्होंने ये कहा कि कहीं आंधी चल रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं हवाएं ठंडी ठंडी चल रही है, शीत लहर है, कहीं कहीं वर्षा हो रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं, लेकिन यहां यहां शांत वातावरण है। क्यों है? तो आचार्य श्री ने अपने मुख से कहा, ये देव और देवियों के सहयोग बिना हो नहीं सकता। एक बूंद पानी की नहीं गिरी उस क्षेत्र में जहां पर कार्यक्रम था। तो आचार्य श्री ने अपने मुख से कहा था, देव और देवियों के बिना हो नहीं सकता। तो शासन रक्षक देव कई बार जिन शासन की प्रभावना के लिए ऐसे कई कार्य करते हैं, अन्य देव भी करते हैं, बहुत सारे देव हैं। कितने सारे ऐसे देव हैं जो जिन भक्त हैं। सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि सबसे अधिक सम्यक दृष्टि जीव देवगति में ज्योतिषी देवों के पर्याय में, ज्योतिष देवों के पर्याय में सबसे अधिक सम्यक दृष्टि जन्मतः भवनत्रिक के सभी देव मिथ्या दृष्टि है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो जन्म से मिथ्या दृष्टि है वो हमेशा मिथ्या दृष्टि रहा है। क्या संसार में कोई भी जन्मतः साधु होता है? कालांतर में ही तो साधुत्व की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार सम्यक्त की बात है। तो जन्म से सम्यक दृष्टि न होना बहुतों के साथ संभव है। अपन अपने बारे में देखें कि अपन कौन है, अपन यहां पंचम काल में कौन है अपन अपने में जो जन्मतः सम्यक दृष्टि बना रहा हो, सम्यक दृष्टि बना होकर आया हो। तो ये शासन यक्ष और यक्षी ये एक समूह है देवों का और देवियों का। लेकिन धर्णेंद्र और पद्मावती इनके विषय में शास्त्रों का जो कथन है वो ये है कि ये भवनवासी निकाय के नाग कुमार जाति के देव और देवी थे। सम्यक दृष्टि तो इनको भी कहा, उनको भी कहा। तिलोय पंडित्य में लिखा कि समोसरण में आने वाले सारे व्यंतर, सारी व्यंतरियां, सारे भवनवासी, सारे भवनवासिनी, सारी भवनवासिनियां, सारे ज्योतिष के देव, सारी ज्योतिष की देवियां, सारे कल्पवासी देव, सारे सारी कल्पवासिनी देवियां, सारे मनुष्य, सारी मनुष्यनी, सारे तिर्यंच गति के जीव, सब के सब सम्यक दृष्टि होते हैं। 12 सभाओं में जितने भी सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव हैं उनमें से एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। तिलोय पंडित्य में गाता है, मिच्छा इठी अभव्वा तेसु असन्नी न होंति कई आई तहय अणज्ज वसाया संदेहा विविह विवरिया। तेसु उन 12 कक्षों में भगवान के उपदेश सभा के अंदर जो 12 कक्ष उनमें, उनके बाहर का नहीं कहा, उन 12 कक्षों में मिच्छा इट्ठी न होती कैयाएं, कभी भी कोई मिथ्या दृष्टि जीव नहीं होते, और कौन नहीं होते, अभव्वा अभव्य जीव भी नहीं होते, अरे भव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी नहीं होते, अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी नहीं होते, अभिप्राय ये निकला, और कौन नहीं होते, असन्नी, असन्नी का अर्थ होता असैनी जीव, बिना मन वाले जीव वहां नहीं होते, जितने भी वहां पंचेंद्रीय जीव हैं सब सैनी होंगे, मन वाले होंगे, और कौन नहीं होते, अनज वसाया, जिनको सुनने की या कुछ समझने की रुचि नहीं है ऐसे जीव भी नहीं होते, अत्यंत रुचिवंत जीव वहां पर होते हैं, और कौन नहीं होते, संदेह, संदेह रखने वाले भी नहीं होते, विश्वास रखने वाले ही होते हैं, संशय संदेह वाले वहां नहीं होते, और कौन नहीं होते, विवरिया, विवही विवरिया, नाना प्रकार की विपरीत धारणा जिनके ज्ञान में भरी हुई है, विपरीत धारणा वाले भी वहां पर नहीं होते। फिर कौन कौन होते हैं, तो 12 कक्षों को अपन देख लो, चतुर्णिकाय देव और उनकी देवियां, और चतुर्णिकाय देव में इंद्रों का होना तो अनिवार्य है, वो देव हो छोटे वाले और फिर उनसे जो प्रधान देव है वो ना हो, ऐसा कैसे संभव है, जिनेंद्र जो होते हैं वो शतेंद्र बंदे होते हैं, तो सारे इंद्र होते हैं, अब सारे इंद्र होते हैं इसका अर्थ यह है कि जो जीव उन निकायों में उत्पन्न हुए हैं जहां सम्यक्त के साथ उत्पत्ति नहीं होती, चाहे वह इंद्र क्यों ना हो, जन्मतः मिथ्यात्व के साथ ही वहां पर जाएंगे, वे भी समावसरण की सभाओं में मिथ्या दृष्टि नहीं रह जाते, इसलिए सारे शासन यक्ष यक्षी, सारे इंद्र इंद्राणी, जो भी वहां समावसरण में चले गए 12 सभाओं में, वो नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव के विषय में एक बहुत महत्व की जानकारी हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि सम्यक दृष्टि को मंगल स्वीकार किया गया शास्त्रों में। मंगल कितने होते हैं, अगर आपसे हम प्रश्न पूछे कि मंगल कितने होते हैं, नहीं वो जो मंगल द्रव्य होते हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे हम, मंगल कितने होते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, चत्तारी मंगलम है ना, लेकिन एक इसमें सुधार कर लेना कि ये चत्तारी मंगलम उन मंगलों के लिए कहा गया है जो उत्तम और शरण भी हैं, उतने ही मंगल है ऐसा नहीं है, जो मंगल मंगल होने के साथ साथ उत्तम भी है और शरण भी है, ऐसे मंगल चार हैं, समझ में आया, ऊपर से बाउंसर चला गया, अगर आपको इसमें संदेह हो तो हम आपको उदाहरण देकर बताते हैं कि उनके अतिरिक्त भी मंगल है, कौन से मंगल है, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्झायाणम नमो लोए सब साहूणम एसो पंच नमो यारो सब पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वे सिम, आ रहा है कुछ दिमाग में, लाइट चालू हो रही है, पडमम हवई मंगलम, यह पंच नमस्कार जो मंत्र है, यह मंत्र भी सव्वे से मंगलारम, सारे मंगलों के बीच, परमम मंगलम अभी प्रथम मंगल होता है। अब क्या करोगे? ये मंत्र परमेष्ठी तो नहीं है, परमेष्ठी मंत्र अवश्य है, लेकिन मंत्र स्वयं परमेष्ठी है क्या? नहीं है। ये परमेष्ठी नमस्कार मंत्र है, पर मंगल है कि नहीं? अवश्य है। तो इससे प्रमाणित होता है कि मंगल अनेक होते हैं, केवल चार मंगल नहीं होते। चार मंगल तो उत्तम और शरण भी हैं, ऐसे मंगल चार हैं जो उत्तम और शरण भी हैं, बाकी मंगल तो अनेक हैं। सिद्ध क्षेत्र मंगल है कि अमंगल? चत्तारी मंगलम में सिद्ध क्षेत्र है क्या? चत्तारी मंगल में तो अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म है। वहां क्षेत्र की चर्चा नहीं है। अब फिर नयों को जोड़ जाड़ करके क्षेत्रों को घटित करो, वो थोड़ा जटिल मार्ग है, लेकिन सीधा सीधा अपन देखो तो वहां पर सिद्ध क्षेत्र गौण है, पर सिद्ध क्षेत्र भी मंगल तो है। अच्छा, सिद्ध क्षेत्र छोड़ दो, अतिशय क्षेत्र मंगल है कि अमंगल? गंधोदक मंगल है कि अमंगल? चौके में जो गुरु के चरणों का गंधोदक लिया जाता है, वो मंगल है कि अमंगल? कोई अमंगल वस्तु को माथे पर लगाता है? वो तो गुरु की चरण रज को इतना पवित्र माना जाता है कि उसको सिर माथे पर लेते हैं। तो मंगल अनेक है, कुछ लौकिक मंगल है, कुछ लोकोत्तर मंगल है। मंगल दो प्रकार के हैं। लौकिक मंगल में पीली सरसों हैं, कुमारी कन्या है, पूर्ण कलश या पूर्ण घड़े को पकड़े हुए कोई नारी, सौभाग्यवती नारी है, इनको लौकिक मंगल में स्वीकार किया गया। फिर स्वर्ण सौभाग्यवती का भी वर्णन आया है। दीक्षा के समय दीक्षार्थी की दीक्षा जिस मंच पर होती है, वहां पर साथिया कौन बनाता है? लोक में जो मंगल रूप है वो आकर के वहां साथिया का चिन्ह बनाती है, और उसके ऊपर श्वेत वस्त्र पर दीक्षार्थी को बैठालकर गुरु महाराज संस्कारित करते हैं, व्रतारोपण करते हैं उन पर। लोक में ऐसे कई मंगल हैं, उसकी गाथा भी आती है धवला में, पंचास्तिकाय में उद्धृत गाथा है, वो आती है कि कितने प्रकार के मंगल होते हैं लोक में। लोकोत्तर मंगल भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो ये सब मंगल में आते हैं। तो बड़ी गंभीर बात जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे वो ये है कि मुनि महाराज भी भले वो पद में बड़े हैं, लेकिन वो भी प्रतिदिन प्रतिक्रमण पाठ करते समय मम मंगलम, मेरे लिए दंशनम, सम्यक दर्शन मंगलकारी हो। मम मंगलम दंशनीय, सम्यक दृष्टि जीव मेरे लिए मंगलकारी हो। मुनि महाराज कह रहे हैं प्रतिदिन प्रतिक्रमण पाठ में, तो जगत के सारे सम्यक दृष्टि मंगल रूप है, इससे ये प्रमाणित होता है। और ये प्रतिक्रमण गौतम गणधर द्वारा प्ररूपित है। यानी गौतम गणधर स्वामी कह रहे हैं कि सारे सम्यक दृष्टि मेरे लिए मंगल रूप है। कितनी बड़ी बात है। तो आज अपन इतना रखते हैं। नीचे से आवाजें आ रही हैं, समय भी अधिक हो रहा है। जैनम जयतु शासनम। परमार्थ देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा।